हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 3 और 4। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे ताकि हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छे तरीके से समझ सकें और इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितास्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। हम अभी जो 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके 2 श्लोक हमने पढ़े और इन 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरी भौतिक प्रकृति में जितने भी लोक हैं, जो कुछ भी है संसार में, उनको एक पीपल के एक अश्वत्थ वृक्ष से भगवान ने कंपेयर करके बताया कि ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, इंद्रिय विषय इसके पत्ते हैं और वेदिक जो वेदों के स्रोत हैं वो इनके पत्ते हैं। और आगे भगवान ने कल हमें बताया अदश्चोध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा कि उसकी शाखाएं जो हैं ऊपर और नीचे हैं गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, और गुण जो हैं उसी की वजह से इसको विकसित इसमें हो रहा है। कैसे हो रहा है? गुणों की वजह से। जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते हैं तो इसका विकास हो रहा है और भी बड़ा होता जाए। अदश्य मूलानि अनुसंततानि, और भगवान ने कहा कि इसका मूल जो है वो वैसे तो ऊपर है लेकिन इसकी कुछ जड़ें जो है ना वो नीचे भी हैं, सेंटर में भी हैं, और इस तरह से इस वृक्ष की नीचे जड़ें नीचे की ओर भी बढ़ती हैं। और कर्मानुबंधी नि मनुष्य लोके, जो मानव समाज के सब काम कर्मों से बंधी हुई है, और जैसे जैसे सब काम कर्म करते रहते हैं तो उस हिसाब से वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, नीचे से ही स्टार्ट करके। जैसे जन्म लोक में, जैसे मृत्यु लोक में है तो उसके नीचे से चले गए, तो वहीं से आपको प्रकृति करने के लिए, प्रगति करने के लिए ऊपर उठना पड़ेगा। आज भगवान श्री कृष्ण हमें इस दुविधा से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो वृक्ष है वैसा कोई इस संसार में वृक्ष है ही नहीं। इस टाइप का तो कोई वृक्ष नहीं है जिसके ऊपर जड़े हो, नीचे शाखाएं हो, और ये वैदिक मंत्र जिसके पत्ते हो, ये सब इस संसार का तो नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार का नहीं है, आपने इस तरह की कोई चीज देखी नहीं है, तो आप इसको समझ भी नहीं सको, छोड़ो इसको नहीं समझो। लेकिन ये है तो सही, ये तो पता तो होना पड़ेगा कि हम इसी के अंदर फंसे हुए हैं, तो इसको ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। मेन क्या करना है, इससे निकलें कैसे। जैसे आपने कल कहा था ना कि मेन तो यही है कि आप इसमें फंस गए हैं, तो निकलें कैसे। तो भगवान बोलता है इसको मैं और विस्तार से बताऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो भगवान कह रहे हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम् सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रे न दिढे न चित्वा तत्तः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणो। अर्थात भगवान ने कहा, न रूप, उसका कोई रूप नहीं है, अस्यः इस वृक्ष का, ऐसा जो वृक्ष में बता रहा हूं उसका कोई रूप नहीं है। किधर, रूपमस ये है, इस संसार में, यानी इस संसार में इससे मिलता जुलता कोई आपको चीज नहीं मिलती है। तथोपलभ्यते, तो फिर आप कैसे अनुभव कर सकते हो, आपने कभी इस तरह की कोई चीज देखी ही नहीं है तो आप उसको कैसे समझ सकते हो। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, यानी कि इसका कोई अंत भी नहीं है, कभी नहीं, यानी कि कोई अंत नहीं है, इसका कैसा वृक्ष है। न चादि, उसका कोई आदि भी नहीं है, आदि मतलब प्रारंभ भी नहीं है, और न अंतो न चादे न च संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा मतलब नींव भी नहीं है, इसका कोई बुनियाद भी नहीं रखी गई है, इसकी कोई, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई स्टार्ट नहीं है, इसका, इस तरह का कोई वृक्ष इस दृश्य जगत में नहीं मिलेगा आपको। तो फिर आप उसको अनुभव कैसे करोगे। भगवान ने कहा, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, आपको इस संसार में इस तरह का कोई भी रूप नहीं मिलने वाला है। न अंतो न चादे न च संप्रतिष्ठा, क्योंकि इसका न अंत है, न आदि है, और न ही कोई नींव है। अश्वत्थमेनम सुविरूढमूलम, लेकिन ये तो मैं बता दूं आपको, एनम का मतलब होता है इस, ये जो इस वृक्ष, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, ये जो पीपल का वृक्ष है, सुविरूढमूलम, उसकी जो मूल है, उसकी जो जड़ें हैं ना, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। सुविरूढ़ यानी कि बहुत अत्यंत दृढ़ हैं, बहुत दृढ़ शाखाएं, उसकी जड़ें बहुत पावरफुल हैं। लेकिन इसको काटना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको काटोगे नहीं तो इसी में जकड़े रहोगे, कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे जाओगे, कभी सेंटर में कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं बाएं, ऐसे इससे निकलना जरूरी है। अब वो वृक्ष क्या है वो तो थोड़ा बता दिया भगवान ने दो श्लोक के अंदर, हम दो दिन से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं इसको समझना छोड़ो, मेन तो क्या है, ये बहुत ही ताकतवर जड़ों वाला वृक्ष है, तो इसको काटना है। कैसे काटना है, ये लाइन जो थर्ड, जिस पर थर्ड लिखा हुआ ना, लाइन नंबर 4, असंग शास्त्रेण दृढ़े न चित्वा। वास्तव में इस पूरे श्लोक की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइन जो है ना वो ये है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक शस्त्र का नाम लिया, शस्त्र यू नो मतलब हथियार, एक ऐसा हथियार बता रहे हैं भगवान जिससे इस बलिष्ठ जो जड़ों वाला वृक्ष है उसको काटा जा सकता है, और भगवान ने उस शस्त्र का नाम दिया है असंग शस्त्रेण दृढ़े न छित्त्वा। असंग शस्त्र यानी कि विरक्ति का हथियार, विरक्ति मतलब डिटैचमेंट। आप इससे तब मुक्त हो सकते हो जब आपके पास विरक्ति का असंग का हथियार होगा, यानी कि किसी भी चीज में जो भी इसमें है, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, टहनियां हैं, इंद्रिय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, जो भी है, इसमें आपको कोई आसक्ति नहीं रखनी है। अगर आपको इस वृक्ष से बाहर निकलना है तो एक ही हथियार है असंग शस्त्रेण दृढ़े न छित्त्वा। इस दृढ़ जो बहुत ज्यादा दृढ़ है उसको काट कर क्या करोगे? अब जब काट लिया है, अब तो देखो हम संसार में है ना, इस वृक्ष में है, अब असंग के हथियार से यानी कि आसक्ति को खत्म करके अनासक्त भाव से इसको हम काट सकते हैं। अब काटने के बाद किधर जाएंगे तो भगवान बता रहे हैं ततः परम तत् परिमार्गितव्यम। ततः मतलब उसके बाद, किसके बाद? इसको काटने के बाद पदम स्थिति को तत् यानी उस स्थिति को प्राप्त हो जाओगे, उस स्थिति को खोजना है परिमार्गितव्यम। अब देखो पहला काम तो क्या करना है, इस संसार से डिटैचमेंट करनी है, इस संसार से आसक्ति को खत्म करना है। इस संसार, ये वृक्ष में क्या क्या था याद है आपको? इसमें पत्ते, इंद्रियां, विषय ही इसके, हाँ इंद्रिय विषय, इसकी ट्रेनियां हैं और शाखाएं, लोक हैं, और अलग अलग भगवान ने बताया कि इसके अंदर जैसे ऊपर जाएंगे तो फिर देव लोक, गंधर्व लोक आदि आएंगे, नीचे लोकों में अतल वितल तलातल सब आ जाएंगे। ये सब वृक्ष की व्याख्या बताई ना भगवान ने। लेकिन अब भगवान ने कहा आप तो इसमें बस गए हो, अब आपको क्या करना है? असंग शस्त्रे न दृढ़े न छित्त्वा, इस चीज, इस वृक्ष के अंदर जो आपकी आसक्ति है, या तो फलों के अंदर है, या पत्तों के अंदर है, या इंद्रियों, जो इंद्रिय है उनके अंदर, या इंद्रिय विषय यानी टहनियों के अंदर है, या किसी भी चीज के लिए, या फिर इसमें जो ब्रह्मलोक है वहां पर जाके तदात्मय तक यानी कि स्वर्ग लोक में जाने की है, कोई भी इच्छाएं हैं, उस सबको असंग शस्त्र न दृढ़े न छित्त्वा, उसको आपको असंग के शस्त्र से यानी कि विरक्ति के हथियार से उसको काटना है। उसके बाद क्या करना है? ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। उसके बाद आपको एक ऐसा रास्ता खोजना है, एक ऐसी जगह खोजनी है यस्मिन् गतानां निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता, जहां पर जाकर ना निवर्तन्ति, कभी नहीं वापिस आते हैं, वो यह वापिस इस संसार में, यानी कि निकलो इस वृक्ष से बाहर, विरक्ति को खत्म करो, आसक्ति को खत्म करो, और ऐसी जगह की खोज करो जहां पर जाने के बाद वापिस नहीं आना पड़े, वापिस इस वृक्ष के अंदर फंसना नहीं पड़े। यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूय। और आगे भगवान कहते हैं तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तम एव, उसको, एव मतलब ही, निश्चय ही, च अध्यम यानी आदि, पुरुषम भगवान प्रपद्य यानी कि फिर आप ऐसा करो उस आदि भगवान की शरण, प्रपद्यन्ते मतलब शरण में जाओ। किस आदि भगवान की शरण में जाओ? ये आगे बताते हैं यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। यत मतलब जिससे, प्रवृत्ति मतलब आरंभ होती है, प्रसृता मतलब विस्तीर्ण होती है, पुराणी मतलब बहुत बहुत सारी पुरानी, मतलब बहुत ज्यादा अनादिकाल से जो भी ये वृक्ष है ना, ये वृक्ष, इसकी टहनियां, उसके पत्ते, उसकी जड़ें, उसके फल, उसकी सारी चीजें जो भी हैं, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ये प्रकृति, भौतिक, जो कुछ भी है, जिससे आदि, उससे यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराण, जिससे आरंभ हुई है, उस भगवान की शरण में चले जाओ जहां पर जाकर वापस नहीं आना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब इसको श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे, पहले आप इसकी ट्रांसलेशन देखो। इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काटे। मेन लाइन है ये वाली, उसके बाद क्या है, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं पड़ता है और भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता रहता। और ऐसे भगवान के पास जाना चाहिए जहाँ से हर चीज आरंभ होती है और विस्तार होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। अब यह स्पष्ट कहा जा चुका है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दशा में होता है। अब यहाँ विष्णु प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखो वास्तविक जो वृक्ष होता है, रियल में होता है, उसकी जड़ें नीचे होती है, लेकिन भगवान जिसकी बता रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, ऊर्ध्वमूल मदशाखा, यहीं पर अटक जाए बंदा कि ऐसा तो कोई वृक्ष होता ही नहीं है, नहीं समझ में आया, रियल में वृक्ष तो उल्टा होता ही है। तो जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चलता है कि यह कितनी दूर तक फैला हुआ है और ना ही वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख सकता है, क्योंकि बहुत ऊपर 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 से आ रहा है। तो हम जब फंस जाते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि कितना दूर है ये ब्रह्मलोक जहां से ये आ रहा है, वहां तक भी हमें हमारी रसाई नहीं है और हमें ये भी नहीं समझ में आता ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। फिर भी का मतलब होता है, लेकिन ये भी तो देखो कि फंस गए हो। तो मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है कि मैं क्यों फंसा, कारण की खोज करनी पड़ती है कि अब कारण कैसे, कि मैं स्टार्ट कैसे हुआ, मेरा आदि क्या है। तो ये बहुत आसान यहाँ पर श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, यानी कि मेरा बाप उसका बेटा जो अमुक पिता का पुत्र है, यानी कि ऐसे ना कि मेरा बाप ये है, उसका बाप ये है, उसका बाप ये है, उसका बाप ये है, उसका बाप ये, ऐसे करते 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 इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, यानी कि फिर पता चलेगा सबके पिता कौन है, ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई है ना। शास्त्र बताएगा कि आखिर में ब्रह्मा जी आएंगे जिन्हें गर्भोदक्षाय विष्णु ने उत्पन्न किया, हमने पढ़ा था ना भगवान गर्भोदक्षाय उत्पन्न, इसे हम कहां से पढ़ते थे, भगवान से कारण दक्षाय विष्णु आए, कारण दक्षाय से विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय से शिरोदक्षाय विष्णु, और इस तरह करते करते हम तक आए कि उसके बाद ब्रह्मा जी आए, फिर शिव जी आए, फिर अलग अलग योनियां, इस तरह हम सब मनुष्य देह सब उत्पन्न हुए। लेकिन ये उल्टा ऐसे बता रहे हैं कि मेरे पिता ये और इसे करते करते गर्भोदक्षाय विष्णु को उत्पन्न किया, इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि हम से लेकर भगवान तक एक श्रृंखला जाती है, एक सीढ़ी जाती है, उस सीढ़ी पर चढ़कर अगर देखेंगे तो आखिर में कौन आएगा, परम पुरुष भगवान आएंगे, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता। उसके बाद भगवान का आदि कौन है ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी बताएंगे ना, अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भगवान का आदि कोई नहीं है, वो अनादि है और समस्त वस्तुएं जो नजर आ रही हैं वो किधर से आई हैं, भगवान से आई हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। तो बोला अब उधर जगह पे जाना है जहां पर जिससे सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, आदि क्या है, उधर तक तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उधर की तरफ नजर नहीं करोगे तब तक तो इसी वृक्ष में उलझे रहोगे। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति के द्वारा करनी चाहिए जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो। श्री प्रभुपाद जी हमें सावधान कर रहे हैं कि जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं, जिन्हें भगवान के विषय में, क्योंकि भगवान ने साफ बताया भक्त्या माम अभिजानन्ति, मुझे केवल मेरे भक्त ही समझ सकते हैं। तो यदि आपको भगवान के विषय में कुछ जानना है तो उनके भक्तों से ही जानना पड़ेगा। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष की स्थिति को आ जाता है। अब देखो, ये जो वृक्ष है वो क्या है, छद्म वृक्ष है, प्रतिबिंब है। हमने पढ़ा था ना कि ये प्रतिबिंब है, जैसे जलाशय के सामने श्री प्रभुपाद ने बोला जो वृक्ष होता है वो तालाब में उसका उल्टा अक्ष नजर आता है, उसी तरह क्योंकि ये जो वास्तविक वृक्ष जो है वो गौलोक वृंदावन धाम में है और इसका जो ये जो भौतिक प्रकृति है उसमें इसका क्या है, सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं, ये जब आप अच्छे भक्तों से इस ज्ञान को सुनोगे तो मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर किसी को एप्पल खाने का दिल हो और वो सोचे कि मैं एप्पल खाऊं, कितना टेस्टी एप्पल होता है, और मिरर में खाली उसको देख रहा है, सामने एप्पल टंगा हुआ है और मिरर में उसको इतना खूबसूरत लाल कलर का एप्पल नजर आ रहा है और बार बार उसको खाने की कोशिश कर रहा है और दुखी हो रहा है क्योंकि वास्तव में तो वो है ही नहीं, वो दुखी होगा, बार बार उसका सर टकराएगा, हो सकता है शीशा टूट जाए तो सर फट जाए, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है। जब वो उधर टर्न करेगा और उसको पता चलेगा अरे असली वाला एप्पल तो सामने टंगा हुआ है, उसको खाएंगे तो फिर है ना हम सेटिस्फाई होंगे। उसी तरह संसार में क्या है, कोई खुशी नहीं है, किसी किस्म का कोई चार्म नहीं है, हमें लग रहा है क्योंकि इतना क्लियर रिफ्लेक्शन है उसका रियल वृक्ष का कि हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में ये यही वृक्ष ही सब कुछ है, ये जो प्रतिबिंब है ना वही सब कुछ है। बार बार उसको प्राप्त करने की, प्रेम को प्राप्त करने की, इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते रहते हैं और बार बार दुखी होते हैं, कभी सर फटता है कभी माथा फटता है, फिर बोले फिर भी करेंगे तो करेंगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये छद्म वृक्ष है और इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाएंगे और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तविक मूल वृक्ष में स्थित हो जाएगा। और जब इससे ये जो भौतिक वृक्ष है उससे संबंध विच्छेद हो जाएगा, यानी उससे आपकी आसक्ति खत्म हो जाएगी और आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि इसमें टेस्ट नहीं है, टेस्ट असली वाले वृक्ष में है, तो उधर आप टर्न करोगे और फिर अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं असंग शास्त्र जो ये तीसरा लिखा चौथी लाइन है ना, असंग शस्त्रेण दृढ़े न चित्वा। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये असंग शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्ता अत्यंत ही प्रबल होती है, अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुष से श्रवण करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देखो विषय भोग की आसक्ति की वजह से तो आप इसमें फंसोगे, इसलिए भौतिक चीजों में, क्योंकि जैसे जैसे आसक्ति बढ़ती जाएगी फिर आप प्रभुत्व जताने का लिए प्रयत्न करोगे और प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित यानी आत्मज्ञान जो है उसको समझने से क्या होगा, विरक्ति सीखनी पड़ेगी हमें, उसको समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान का अंश है, ये सब नकली है, प्रतिबिंब है, हमें रियल वृक्ष के अंदर से जो रियल फल है उसको खाने से आनंद मिलेगा। जब ये चीज हम करेंगे तो फिर ऐसा नहीं कि फटाफट से हमारे अंदर विरक्ति आ जाएगी, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हमें विरक्ति सीखनी पड़ेगी, हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा कि हमें इसमें टेस्ट आता है फिर भी, क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन है उसका कि ऐसा लगता है कि टेस्ट आ रहा है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आत्म जो शास्त्र है, प्रामाणिक गुरु हैं, उन आधारित चीजों पर हमें विरक्ति सीखनी पड़ेगी और ज्ञानी पुरुष से श्रवण, जो ज्ञानी लोग हैं, जैसे हम श्री प्रभुपाद से समझते हैं तो श्री प्रभुपाद हमारे कैसे हर चीज को एकदम क्लियर करके बताते हैं, तो ऐसे ही एक तो जिससे हम सीखते हैं वो भक्त होना चाहिए और ज्ञानी भक्त होना चाहिए, उससे हम जब सीखते हैं तो भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है, फिर क्या होता है क्योंकि हमें सब कुछ पता चल जाता है तो हमें और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, फिर कृष्ण प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वो है भगवान की शरण ग्रहण करना। अब जब किसी ज्ञानी भक्त का आपको संग मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि संसार में कुछ भी नहीं है और आपको भगवान की शरण ग्रहण करनी है, तो पहला ही कार्य है आप बाकी फौरन डिटेच करके, भले डिटेचमेंट सही नहीं होती है आपकी, लेकिन फिर भी आपको भगवान की शरण तो ग्रहण करनी पड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता होगी, क्योंकि प्रेम एक बार एक साइड पे प्रेम भरेगा तो दूसरी साइड पे घटेगा ना। अब प्रेम करने के लिए आपको एक दूसरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है, वरना तो संसार में हम प्रेम करते हैं, लेकिन जब कोई भक्त कोई गुरु हमें बताता है कि प्रेम करने योग्य तो केवल कृष्ण है, तो आपका प्रेम डाइवर्ट हो जाता है, प्रेम खत्म नहीं होता है, प्रेम डाइवर्ट हो जाता है। फिर जब आपका प्रेम किस कृष्ण की ओर बढ़ जाता है तो संसार की ओर आसक्ति स्वयं घटती रहती है, भक्त को बताना नहीं पड़ता है, भक्त का प्रेम जो है वो स्वतः खत्म हो जाता है। और शरण कैसे ग्रहण करनी है, यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छत्म प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं आता है। कौन सा स्थान है, यहाँ पर बोला तो यही गया ना, ततः परम ततः पदम पर परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति बोया, कि फिर आपको भगवान की शरण लेकर ऐसी जगह की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस नहीं लौटना पड़ेगा। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है, उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई नहीं है। यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी, जिससे सब कुछ आया है और विस्तृत हो रहा है, तो उनकी शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त आपके पास और कोई चारा नहीं है और कोई उपाय नहीं है इस वृक्ष से निकलने का। तो वो और भगवान की शरण कैसे ग्रहण करते हैं, वो बता रहे हैं श्री प्रभुपाद, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है। और भगवान की शरण आप कैसे, इतना इजी तरीका है, श्रवण करो कथा को और कीर्तन करो, भगवान के नाम को श्रवण करो, भगवान की कथाओं को लीलाओं को श्रवण करो और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोला इस तरह से आप होता है श्रवण कीर्तन आदि से भक्ति करने से फलस्वरूप प्राप्त होता है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार का कारण है, कौन, भगवान कृष्ण। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने कर दी है। भगवान ने कहाँ की थी, भगवान ने 10.8 में बताया था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं 10.8, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है, जो बुद्धिमान व्यक्ति या बलि भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये तो पहले से ही भगवान ने बता दिया कि मैं ही सारी चीजों का आदि उद्गम हूँ। तो यहाँ पर बताया भगवान ने कहा, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, फिर आपको आदि पुरुष की शरण में शरण ग्रहण करोगे, और यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी, जिससे हर चीज उत्पन्न हुई है और फिर विस्तृत हुई है। तो भगवान ने पहले ही बता दिया वो तो मैं हूँ, अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए केवल और केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाएगा, और भगवान की जब शरण ग्रहण करेंगे, भगवान के साथ प्रेम हो जाएगा, तो संसार के साथ प्रेम खत्म होना ही है, क्योंकि जब रियल प्रेम मिल जाएगा तो फिर आर्टिफिशियल की तरफ कौन जाएगा। जब रियल स्वाद आना लगेगा, जब वास्तविक अमृत का आस्वादन करेंगे, फिर क्या होगा, ऐसा नहीं कि वापस से संसार में टेस्ट आएगा, क्योंकि स्वादु स्वादु पदे पदे, ये जो भगवान के अमृत, भगवान के नाम अमृत में जो टेस्ट होता है वो हर क्षण बढ़ता जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।